तो आज का सेशन जो है हालांकि अनप्लान्ड है बट कैन बी अ वेरी हिस्टोरिकल सेशन, क्योंकि आज का सेशन मैं अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहूंगा। आज का सेशन हम लेंगे ए टू जेड ऑफ भक्ति, ए टू जेड नहीं, ए टू जेड तो गोपी भाव तक होता है, ए टू जेड ऑफ भक्ति, मंजरी भाव पर्यंत तक। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जीव के जब आध्यात्मिक पुण्यों का संचय होता है, एकाग्र होते हैं, तो उसके ऊपर भगवत कृपा विशेष होती है और उसे भक्तों का संग प्राप्त होता है। तो उसको भक्तों का संग प्राप्त होता है। सामान्यतः जो जीव होता है वह अच्छा बुरा करता रहता है और अपने कर्मानुसार उसको व्यक्तियों का संबंध मिलता रहता है, पर जब भगवत कृपा विशेष होती है तो उसको भक्तों का सानिध्य लाभ होता है, प्राप्त होता है। आज जब भक्तों का सानिध्य प्राप्त होता है तो व्यक्ति ये समझता है कि भाई अच्छे बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये दोनों कार्य करके तो हम जन्म मृत्यु के जंजाल में ही फंसे रहते हैं। धीरे धीरे फिर जब जीव कुछ वास्तविक साधु संग प्राप्त होता है तो वो ये समझ पाता है कि इस दुनिया के परे भी एक और दुनिया है, उसे वैकुंठ जगत कहा जाता है, वैकुंठ लोक है, अनेक अनेक वैकुंठ लोक है, वहां पर विष्णु तत्व विराजमान है और उन सब के भी फाउंटेन हेड अंशी स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो ये सब जब ज्ञान प्राप्त होता है तो व्यक्ति पहले तो जन्म मृत्यु से पार होने का सोचता है, उसके बाद जब पूरा ज्ञान प्राप्त होता है तो व्यक्ति सोचता है जन्म मृत्यु प्राप्त होके मैं वैकुंठ जा सकता हूँ, परंतु धीरे धीरे वो कृष्ण भगवान के बारे में सुनता है तो सोचता है ये तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबके अंशी है, सबके मूल कारण है, सर्व कारण कारणम है। तो व्यक्ति कृष्ण प्राप्ति की इच्छा अभिलाषा मन में जागृत होती है, नहीं तो क्या होता है, भगवत प्राप्ति की अभिलाषा केवल। जब जीव कृष्ण के बारे में सुनता है, कृष्ण के लोक के बारे में, तो उसकी इच्छा जागृत होती है, काश मुझे भी कृष्ण प्राप्ति हो सकती है। इससे पहले क्या होता है कि भगवान के बारे में हम सुनते हैं और यही बोला जाता है भगवत दास बन सकते। धीरे धीरे जब हम श्री कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो हमको समझ आता है कि हमारा भगवान से संबंध केवल दास्य भाव में नहीं, इससे उन्नतर स्तरों पे भी हो सकता है। जैसे साक्षात कृष्ण के साथ हम उनके सखाओं की कथा सुनते हैं, श्री कृष्ण के सखा जो होते हैं वो श्री कृष्ण के ऊपर चलते हैं जब वो खेल में हार जाते हैं और लात मारते हैं, एक घोड़ा बन के तेज चलो। तो हम ये सोचते हैं कि ऐसा भी होता है भगवान के साथ लीला। फिर हम सुनते हैं कि भगवान की पत्नी भी होती है, वो बोलते हैं पारिजात फूल लेके आओ, तो वो इंद्र से लड़ाई करते हैं, पारिजात पेड़ लेके आ जाते हैं, तो क्या ऐसा भी होता है। फिर हम पाते हैं किसने तपस्या करी वो पत्नी बन, तो हमारे मन में भी अभिलाषा होती है क्या ऐसे भी होता है। फिर हम सर्वोत्तम लीलाएं श्रवण करते हैं, जैसे भगवान तो वैसे किसी के बनने में नहीं आते, पर यशोदा मैया राधा दामोदर लीला, यशोदा मैया उन्हें बांध देती है अपने प्रेम में, अपने वात्सल्य प्रेम में। ये जो प्रेम है ये चौथी श्रेणी का है, पांचवी में सबसे उत्तम श्रेणी है कांता भाव। कांता भाव गोपी भाव में हम पढ़ते हैं जो श्रुति है, पर्सोनिफाइड फॉर्म ऑफ द श्रुतिज, यानी कि वेदों का पर्सोनिफाइड फॉर्म ऑफ द वेदास, वो तपस्या करती हैं गोपी भाव प्राप्त करने के लिए। तो हम ये सोचते हैं तुम्हारे को पता चलता है कि गोपी भाव प्राप्त करना सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होता है, तो हमें कोई अगर प्राप्त कर सकता है तो इसका मतलब हम भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम पाते हैं लक्ष्मी देवी तक कामना करती है गोपी बनने की, तो मतलब ये कामना की जा सकती है और कामना की सिद्धि भी होती है अगर सही रूप से साधना की जाए, वो सिद्धि नहीं होती यदि सही रूप से साधना ना की जाए। श्रुतियों में हम देखते हैं श्रुति सही से साधना करती हैं तो उनको क्या क्या प्राप्त होता है, सिद्धि प्राप्त होती है, सफलता प्राप्ति, और वो गोपियां ये बन पाते हैं, और लक्ष्मी देवी, क्योंकि सही रूप से साधना नहीं करती, इच्छा होना और साधना करना ये दोनों अलग विषय है। और एक चीज होती है कि इच्छा ही ना होना, अगर किसी की इच्छा ही नहीं हुई है तो उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। साधन बिना साध्य वस्तु कभी नहीं मिले, ये चैतन्य चरितामृत में बताया गया। साधना किए बिना साध्य वस्तु कभी नहीं मिल सकती। तो सही साधना की आवश्यकता है, तो हम जान पाते हैं कि वैकुंठ के ऊपर भी गोलोक है, गोलोक में श्री कृष्ण के साथ अनेक रसों में संबंध हो सकता है। उसके बाद हम पाते हैं कि हमारे अंदर कामना होती है कि मैं कृष्ण की सबसे अंतरंग रूप से सेवा कर सकूं। तो हम सोचते हैं हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लाओ, हरे कृष्ण महामंत्र को फिर हम रुचि पूर्वक करना शुरू करते हैं। हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लाओ, हे राधा रानी मुझे अपनी सेवा में लगाओ। फिर हम थोड़ा और अगर ढंग से सोचें तो राधा कृष्ण को बोल रहे हैं अपनी सेवा में लगाओ, तो हम पूछेंगे कि हम कि कब कब सेवा में लगने के लिए हम बोल रहे हैं भगवान को। जब जब के लिए बोलेंगे वो तब तब लगाएंगे, और हम कृष्ण को बोल रहे हैं सेवा में लगाओ तो ठीक है वो गोपी बना के भी लगा सकते हैं, सखा बना के भी, पर हम बोलेंगे नहीं हम माधुर्य भाव में सेवा करना चाहते हैं। ठीक है आप माधुर्य भाव में सेवा करो, पर हम जब ग्रंथों में के माध्यम से ये तो वेदों में प्राप्त होता है कि श्रुतियों ने साधना की और वो गोपियां बन गई, परंतु वेदों में मंजरी भाव के ये डीप रहस्य मालूम नहीं होते। वेदों में मंजरी भाव है पर बहुत गुप्त रूप से है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे है। परंतु जो डीप रूप से मंजरी भाव है वो षड गोस्वामियों के ग्रंथों में है। षड गोस्वामी अष्ट गोस्वामी कौन है? वही मूल मंजरियां हैं। अष्ट गोस्वामी ही मूल मंजरियां हैं, अपने बारे में वही तो बता सकती हैं सबसे ज्यादा, और कौन बताएगा। तो इसलिए जो हमारे गौड़िया वैष्णव जो हम हैं, हमारे मूल आचार्य कौन है? हमारे मूल आचार्य कौन है? षड गोस्वामी। और कोई आचार्य नहीं है, कोई आचार्य नहीं है, कोई प्रभुपाद नहीं है, एक ही है प्रभुपाद, रूप गोस्वामी प्रभुपाद, एक ही प्रभुपाद है। और हम इन प्रभुपाद के अनुगत्य करते हैं, क्यों? क्योंकि यही मंजरी, यही तो मंजरी है। अगर हमें जो साधना है उसमें सिद्धि कभी मिलेगी ही नहीं जब तक सही रूप से अनुगत्य नहीं होगा। अनुगत्य तो भक्ति साधना का प्राण है, अनुगत्य में जीवन, बिना अनुगत्य के प्राप्ति नहीं होगी। तो हमारे जो मूल आचार्य हैं मंजरी भाव के वो षड गोस्वामी है। अब हम हरिनाम कर रहे हैं, बोल रहे राधा कृष्ण मुझे अपनी सेवा में, पर हम जान पाते हैं कई सेवाएं तो ऐसी होती हैं जो ललिता विशाखा भी नहीं कर पाती सखियां। तो फिर प्रश्न उठता है कि सेवा में लगाओ कह रहे हैं, कई सेवा ललिता विशाखा नहीं कर पाती पर कोई और कर पाता है, उनको और भी आनंद प्राप्त होता है। अभी तक तो हमने यही सुना था कि गोपियां का सर्वश्रेष्ठ है भगवान से संबंध, तो अब पता चला नहीं 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 नहीं, इससे भी गूढ़ संबंध होता है मंजरियों का। फिर हम हरिनाम से प्रार्थना करते हैं कि हे राधा कृष्ण मुझे अपने सेवा में लगा, और वो भी 24/7 24 घंटे मुझे अपनी सेवा में, उस समय भी सेवा में लगा जो राधा कृष्ण आपस में विलास कर रहे हो, उस समय भी, उस समय सेवा सखियां नहीं कर सकती, सखा नहीं कर सकते, वात्सल्य के रस में तो गंध भी नहीं होती इस माधुर्य रस की। तो हम पाते हैं कि मंजरी भाव सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और सर्वश्रेष्ठ तो है पर ये मिलेगा कैसे थी? ये मिलेगा कैसे? शास्त्रों में तो अनादिकाल से है कि गोपियां हैं, और राम भगवान के समय पे भी दंडकारण्य के जंगल में ऋषियों ने देखा, आकर्षित, सोचिए राम में ही इतना आकर्षण है, सोचिए तो कृष्ण में कितना आकर्षण होगा। राम को देख के ही वो हो गए कि आप हमें अपनी भार्या बना लो। उन्होंने बोला ऐसे तो अभी नहीं कर सकता, कृष्ण में, कृष्ण रूप में जब मैं आऊंगा तो आप को ही सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये साधना तो अनादिकाल से है गोपियां बनने की साधना, परंतु चैतन्य चरितामृत में बताया गया, महाप्रभु स्वयं कहते हैं अमार बिना दिने तार नहीं शक्ति, मेरे बिना ये कोई दे ही नहीं सकता। ये महाप्रभु को स्वयं आके देना पड़ता है, स्वयं आके। महाप्रभु के बिना, अब ये महाप्रभु कौन है? महाप्रभु है राधा कृष्ण का युगल रूप। ये भगवान जो है, ये जो रस आस्वादन है, ये खुद भी करना चाहते हैं, क्योंकि इतना आस्वादनीय है राधा भाव आस्वादन श्री कृष्ण करना चाहते हैं, ठीक बात है, परंतु उसमें इतना चमत्कार नहीं है, चमत्कारित्व नहीं है जितना मंजरी भाव में है। आपने सुना होगा कि महाप्रभु के अंग जो है, जोड़े जो है वो खुल जाते हैं, सुना आपने, हड्डियां फैल जाती है, नहीं सुना? ऐसा होता है कि जैसे ये है जॉइंट्स हैं, ये सब खुल जाते हैं, ये लंबे लंबे हो जाते हैं, हाथ सब लंबे लंबे हो जाते हैं, और बिल्कुल हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सप्रेसिव पे होते हैं। ये किस समय पे होते हैं? जब राधा भाव आस्वादन करते हैं, नहीं, जब मंजरी भाव आस्वादन करते हैं। तो सबसे ज्यादा चमत्कारित्व जो है वो मंजरी भाव के आस्वादन भगवान के लिए। तो भगवान ये स्वयं भी आस्वादन करना चाहते हैं और करवाना भी चाहते हैं। और ये जो बात है मंजरी भाव का, ये गुप्त रूप से वेदों में भी है, ध्यानचंद पद्धति में भी है, षड गोस्वामी लिटरेचर में भी है, एक आदर्श भाव मंजरी भाव। कई बार लोग क्योंकि मन में आता है कि भाई पता नहीं, ये जो हमें फिलोसफी पे विश्वास नहीं है, एक आदर्श भाव पे, सिद्ध प्रणाली पे विश्वास है या नहीं, ये तो प्रश्न गलत है। वास्तव में प्रश्न गलत क्यों है? प्रश्न इसलिए गलत है क्योंकि महाप्रभु, जब से महाप्रभु चले गए इस धराधाम से, तब से लेके करीब 100 वर्ष पहले तक एक ही रूप से सभी भक्तों ने सिद्धि प्राप्त की, एक ही भक्ति एक ही तरीके से होती थी। गुरु के पास जाओ, जिस रस में सिद्धि प्राप्त करनी है उस रस के मंत्र लो, वैसी साधना करो और सिद्धि प्राप्त करो। तो जो भी मंजरी महाप्रभु के बाद तो मंजरी भाव का ही प्रचार था, तो मंजरी भाव से सिद्धि प्राप्त सभी महापुरुषों ने एक ही तरीके से करी है। एक किसी महापुरुष से एक आदर्श भाव से प्रणाली ली, उस पर मेडिटेट किया, ध्यान किया, साधना की और सिद्धि प्राप्त। तो ये तो प्रश्न नहीं है कि मेरे को ये बात एग्री नहीं होती, हमें ये बात, ये फिलोसफी मेरे को ठीक नहीं लगती। ठीक लगना या लगना तो प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न है कि कोई नई चीज आ रही है वो ठीक है कि नहीं है। एक चीज तो अनादि सिद्ध है, एक चीज अनादि सिद्ध है, उसमें तो प्रश्न ही नहीं है। ब्रज के भक्त पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें कई 100 भक्तों के, संतों के चरित्र हैं, उनमें सबका क्या है कॉमन पॉइंट? सिद्ध प्रणाली, सबने अपने गुरु से सिद्ध प्रणाली ली और गुरु रूप सिद्ध दे मंजरी भाव पे मेडिटेट किया, वो साधना की, सिद्धि प्राप्ति, कोई समस्या नहीं। कई लोग बोलते हैं नहीं, हमारे यहाँ पे सारे भाव मिलते हैं, सारे भाव मिलते हैं तो इसका मतलब तो वैसे है कि अभी कोई परंपरा नहीं है, क्योंकि एक परंपरा में तो एक ही भाव मिल सकता है, क्योंकि जो मेरे गुरु ने किया वही उनके गुरु ने किया, वही उनके गुरु ने, वही उनके गुरु ने, भगवान तक वो परंपरा चली जाती है। तो एक चेन है, एक भाव को फॉलो करने उसको परंपरा कहते हैं। ये जो लोग बोलते हैं अज्ञान में बोल रहे हैं, क्योंकि शास्त्र ज्ञान नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ सब भाव मिलते हैं। सुपर मार्केट नहीं होती परंपरा, परंपरा का मतलब है एक चीज मिलेगी, एक साक्ष्य भाव की अलग परंपरा, वात्सल्य भाव की अलग परंपरा। आप भगवान राम के साथ अगर संबंध बनाना चाहते हो उसमें भी अनेक परंपराएं हैं, आपको मालूम है? अगर आप भगवान राम से भी संबंध बनाना चाहते हो तो रामानंदी संप्रदाय में जाएंगे तो अनेक परंपराएं हैं, अनेक अनेक रसों के अनुसार। तो परंपरा का मतलब ही होता है एक रस की प्राप्ति के लिए वो परंपरा है। परंपरा हमेशा भगवान के नित्य से पार्षदों से आती है, तो नित्य से जो पार्षद है वो एक रस में भगवान की सेवा कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं बात को? तो ये तो प्रश्न ही गलत, ये तो टॉपिक भी बड़ा गलत है कि हमारे कोई फिलोसफी एक्सेप्ट नहीं है। पहली बात तो फिलोसफी तो एक ही है, बाकी सब तो फिक्शन है। या आप लेजी होकर बैठे रहो, कोई ना कोई ले जाएगा आपको मृत्यु के अंत में, ये तो फिक्शन है। फिलोसफी तो एक है, हमें विश्वास नहीं है फिलोसफी में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको विश्वास ना हो भगवत धाम में, तभी भगवत धाम रहेंगे। आपको विश्वास ना हो कि संतों के वाक्यों में, तभी संतों के वाक्य भगवान की तरह सत्य रहेंगे। निताये चरण सत्य ताहर सेवक नित्य, उनके सेवक की वाणी भी नित्य है। आपको विश्वास नहीं होता, वो आपके स्वल्प पुण्यम वतम राजन विश्वास नहीं हो जाए। तुम्हारे पुण्य स्वल्प है इसलिए तुम्हें विश्वास है, तुम्हारे पाप हैं, तुम्हारे कर्मों में पाप हैं। हम कईयों की कुंडली देखें साफ हो जाता है ये पाप की कुंडली है, तुम्हारे कर्मों में पाप ही पाप है, इसलिए स्वल्प पुण्यम वतम राजन विश्वास नहीं हो जाए। तो कहीं पे भी अगर कोई बोले कि हमारे सब रस मिलते हैं, मतलब वो वैसे ही बोगस है, ये फिलॉसफी नहीं है। फिलॉसफी में तो एक रस मिलेगा, बाकी तो ये तो फिक्शन है, एंड में आपको कोई ले जाएगा। कोई शास्त्र ये अनुमोदन नहीं करता इस बात का। साधन बिना साध्य वस्तु कबू नहीं मिले, महाप्रभु स्वयं बता रहे, साधन बिना साध्य वस्तु कभी नहीं मिलेगी। साधन तो करने पड़ेंगे, वैसे भक्त में क्या देख रहे हैं, साधन कर रहे हैं सबने। अब यहां पे ये ग्रंथ है सनत कुमार संहिता, इसमें नारद जी सदाशिव से पूछते हैं कि हे गुरु, हे भगवान, आपने मेरे कई प्रश्नों के उत्तर बताए हैं। नारद के भी प्रश्न होते हैं, उसके बाद उनको उत्तर आपने बताए हैं, वो बात तो ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूं, पर इसके ऊपर भी एक बहुत ऊंची बात है, क्या है, पर अब मेरी इच्छा है सबसे श्रेष्ठ पथ जो है राग माल भजन, उसके बारे में मैं सुनना चाहता हूं। सब प्रश्न उत्तर होगा उसके बाद भी श्रेष्ठ मार्ग होगा, उसके बारे कमेंट नहीं करना चाहिए, पहले सुनना चाहिए ये राग मार्ग क्या होता है। ये है सनत कुमार संहिता। फिर सदाशिव ने बोला नारद को, हे ब्राह्मण, पूरे संसार का भला करने के लिए तुमने ये बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा, इससे संसार का भला होगा, हालांकि ये बहुत गूढ़ सीक्रेट है, छुपी हुई वस्तु है, रहस्य है, परंतु फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा। जो श्री कृष्ण की गोपियां हैं वे परक या रस में हमेशा उनकी प्रेममयी सेवा करती हैं और लीला रस आस्वादन करती हैं। तो साधक को स्वयं को एक अपने आप को गोपी के रूप में ध्यान करना चाहिए और समझना चाहिए कि मैं बहुत सुंदर अंग से गठित हूं और एक सुंदर युवती हूं और हर प्रकार के गुणों में ज्ञान है और श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हूं, परंतु श्री कृष्ण निजी रूप से आस्वादन नहीं चाहती। मंजरी भाव सनत कुमार संहिता में भी है, पर श्री कृष्ण निजी रूप से आस्वादन नहीं चाहती। राधा की सखी हूं और हमेशा राधा की सेवा करने में रत हूं और राधा के प्रति ज्यादा प्रेम है, कृष्ण के प्रति कम है। राधा के मुकाबले अन्य जो संबंध होते हैं उनका कृष्ण के प्रति रति होती है, ये है भाव उल्लास रति, ये राधा रानी के प्रति रति है। अन्य रसों में श्री कृष्ण की सेवा किया थी, इसमें श्री कृष्ण सेवा करते हैं। वह निजी संग कृष्ण का नहीं चाहती क्योंकि वह अद्भुत सेवा रस का आस्वादन करके, राधा कृष्ण जुगल की सेवा का आस्वादन करके पूर्ण रूप से संतुष्ट है। जब तक पूर्ण से संतुष्टि नहीं मिलेगी तो जब जैसे हम अपने से ऊपर देखेंगे तो इस चीज हम चाहेंगे वो मुझे मिल जाए, नहीं, ये पूर्ण रूप से संतुष्ट है। श्री कृष्ण राधा भाव अपनी जिस हद तक जा सकते थे, सारी हद तक नहीं जा सकते श्री कृष्ण की राधा भाव को आस्वादन करने, क्यों, क्योंकि राधा भाव तो बढ़ता रहता है, आस्वादन कैसे करोगे आपको जो हमेशा बढ़ती है, निरंतर वर्धनशील है। तो श्री कृष्ण ने भी राधा रानी का भाव आस्वादन करने की चेष्टा की थी, पूरा राधा भाव आस्वादन नहीं कर पाए थे, राधा भाव असीमित है, असीमित चीज को कोई भी चीज सीमा में बद्ध नहीं करते, मैंने कर लिया, अच्छा आगे बढ़ रहे थे नहीं कर सकते। तो श्री कृष्ण अपनी सारी हदों तक जाके राधा भाव आस्वादन किया, परंतु उसके बाद भी क्या इच्छा हुई उनकी, मंजरी भाव का आस्वादन करने। तो ये इतना श्रेष्ठतम भाव है, ये सेल्फलेसनेस की हाइट है, इससे ऊंचा सेल्फलेसनेस नहीं है मंजरी भाव। तो बताया गया साधक को ब्रह्म मुहूर्त में पूरे अष्टकाल लीला दिन रात रात्रि दिन करे राधा कृष्ण स्मरण सेवन, तो यही ये करना चाहिए। नारद ने बोला कि मैं अब अष्टकालीन लीला के बारे में सुनना चाहता हूं। अब पहले एक बात समझ आ गई कि सबसे श्रेष्ठ मंजरी भाव है, उसके बाद पता चला कि शास्त्रों में भी ऐसी साधना ऐसा कुछ है। अब नारद ने बोला ये तो आपने बता दिया भाई कि हाँ ये सबसे श्रेष्ठ है, पर इसे मैं करूंगा कैसे, ये तो बता दिया श्रेष्ठ है, मैं कैसे करूं, इसमें डीपली बताया गया। अब मैं वास्तव में अष्टकालीन लीला के बारे में सुनना चाहता हूं, क्योंकि
जब मैं आज का लीला के बारे में सुनूंगा इन तो मानसिक सेवा कैसे करूंगा। जय कृष्ण है ना, वो बोल रहे अपने आपको रात्रि दिन करो बजे, अरे रात्रि दिन तो करूं पर मैं करूं कैसे, वो करते क्या मुझे क्या पता। तो नारद कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू हियर अष्टाली लीला, मैं सुनना चाहता हूँ अष्टाली लीला क्या होती है, तो उसको सिना दिना तो मानसिक सेवा कर ही नहीं सकता। तो कोई भी व्यक्ति अगर मानसिक सेवा या गोपीगंज अनुगत से करना चाहिए तो सबसे पहले उसको अष्टाली लीला सुननी पड़ेगी। मानसिक रात्रि दिन कर कैसे होगा, रात्रि दिन में भी नहीं होगा, रात्रि को तो छोड़ दो, स्वप्न में भी नहीं होगा कभी। तो अष्टकालिक लीला सुनना इतना महत्वपूर्ण है। और कई संस्था में देखा जाता है कि टेंथ कैंट सुबह भागवतम क्लास में आता तो गुरु रुकवाते हैं, नहीं नहीं टेंथ कैंट नहीं सुनना। अरे आप बाकी में गौड़िया वैष्णव हो क्या? मेरे कुछ कुछ आचार्यों से मेरी बात भी हुई, वो कहते हमने आज तक शर्ट दुकान में कोई जरूरत नहीं पड़ा, तो जरूर आपको कुछ प्राप्त होगा। कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, कोई अष्टा लीला कभी नहीं पढ़ी, मैं वो क्लियर बोल रहे। और एक भक्त हैं, वो राजाकुंड में आए थे फुल टाइम उसी मंदिर से, उस मंदिर से आए तो उन्होंने उन आचार्य जी से बोला कि भाई मैं मंदिरी बनना चाहता हूँ, मैं मंदिरी रूप में स्मरण करना चाहता हूँ, तो अगर आप मेरे को इसमें सिद्धि करा दो तो मैं कहीं नहीं जाता। उन्होंने बोला भाई मैं तो अब तक अपने आप को महाप्रभु का दास मानता हूँ, राधा कृष्ण मोहन का दास मानता, तो फिर 40 साल साधना करने के बाद आपको ये वाली अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर नहीं हुआ तो हमको आपका अनुभव से करके कैसे कुछ क्लियर होगा कभी भी, समझ रहे बात। तो बड़े शोक का विषय है, इसलिए हमारे गुरुदेव ने बोला, हमने लास्ट बार ही सुनाया था कि ना दुर्भाग्य का विषय है, महाप्रभु का अनुगत करके तो महाप्रभु को मानते नहीं। इस संबंध में मैं आपको एक और बात बताऊंगा। अब ये बात हुई कि चलिए तो पता चल गया कि मंजरी भाव श्रेष्ठ है, अब ये मिलेगा कैसे, प्रश्न तो वही चल रही है, ये सब किताबें भी हो गई, अब मिलेगा कैसे, जो वेदों के परे है बात सोचो, वेदों के परे तो कुछ नहीं है पर सोनिफाइड फॉर्म ऑफ द वेदास जो है वो हद तक कहां तक जा पाते हैं, गोपी भाव तक, तो मंजरी भाव तो वेदों के भी परे है उसकी प्राप्ति। तो महाप्रभु जब इस धराधाम से अप्रकट होने वाले थे उससे पूर्व महाप्रभु अद्वैताचार्य से मिले और अद्वैताचार्य को बोला कि मैं आपके बुलावे पे यहां आया हूं परंतु मेरा भी एक कार्य शेष रह गया है, ये हरि बोल, ये हमें पता चलता है कवि करणपुर द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है चैतन्य चंद उदय नाटक, उसमें बात प्राप्त होता है। महाप्रभु ने बोला कि मेरा अभी भी एक कार्य शेष रह गया है, जो मेरे संप्रदाय में मेरे आश्रित जन होंगे, जो मेरे आश्रित जन हैं और जो मेरे आश्रित जन होंगे उनके ऊपर मैं विशेष कृपा करना चाहता हूं, मैं उन सबको मंजरी भाव आस्वादन देना चाहता हूं, तो तुम मेरे से ये वर मांग लो क्योंकि मैं तुम्हारे कहने पर यहां आया हूं। कितने मर्सी बोले ना, मांग लो मुझसे, ओके अगले चाल, ओके ठीक है। तो आप इसके अंदर बड़ी एक लाइन में बहुत गंभीरता है, जो मेरी संप्रदाय मेरे आश्रय जन होंगे, आश्रय लिया सही बजे तारे कृष्ण नाई तेजे आज सब मरे अकारण, आश्रय लिए सही बजे, जो आश्रय लेके भजन करता है, भक्ति के पहले स्टेप क्या है, गुरु का मतलब सदगुरु ही होता है जो सत परंपरा से होता है, ये बात को पहले याद रखिए, कंफ्यूजन कभी नहीं होगी फिर। तो पहले सत परंपरा से जुड़े सदगुरु का आश्रय लेना होगा, आश्रय ले या सही भजे, जो आश्रय लेके भजन करता है उसका तारे कृष्ण ना ही त्यजे, उसको कृष्ण कभी नहीं त्यागते, आज सब मरे अकारण और सब अकारण मरते हैं, बिना कारण के मरते हैं। तो जो मेरे संप्रदाय में आश्रित होके भजन करेंगे उनको मैं मंजरी भाव सबको अभी भी दे रहा हूं और सबको दूंगा, ये मेरा कार्य शेष रहेगा, ये तुम मेरे से वर मांग लो, अद्वैताचार्य का बोलते हैं। अद्वैताचार्य ने वर मांग लिया और उसके बाद भी एक तो प्रश्न, एक तो निवेदन और, एक निवेदन और है। महाप्रभु को बोला कि महाप्रभु इससे श्रेष्ठ तो जीवों के लिए कुछ हो ही नहीं सकता कि उनको मंजरी भाव आस्वादन प्राप्त हो जाए। आई एग्री। महाप्रभु बोला व्हाट एल्स डू यू वांट देन, और की लग दे। तो महाप्रभु को अलगाचार्य ने निवेदन किया कि मेरे यही निवेदन है कि जैसे आप सबको मंजरी भाव आस्वादन दे रहे हैं, आप कृपा करके अपनी चरण सेवा भी साथ में ही नित्य प्रदान करें। तो अद्वैताचार्य की करुणा की वजह से बद्ध जीव को मंजरी भावास्वादन भी प्राप्त हुआ, साथ में महाप्रभु की डायरेक्ट सेवा भी प्राप्त हुई। ये चैतन्य चंद्र नाटक में बताया गया कवि कालिदास द्वारा। ये उसी में बताया जा रहा है कि ये कैसा होगा ये आस्वादन जब महाप्रभु की लीला में सेवा करेंगे। ये बिल्कुल जात स्मरण की तरह, जात स्मरण समझते हैं, जब पुष्य जन्म का स्मरण होता है, थोड़ा थोड़ा होता ना, जैसे याद आ रहा है कि मैं उस जन्म में था, बॉम्बे में जन्म लिया था 1942 में, मैं ये था, ऐसा होता है ना, उस प्रकार से मैं मंजरी हूँ। इस प्रकार से महाप्रभु की लीला में रहेगा जात स्मरण, पढ़ा हुआ आप लोगों ने ग्रंथों में, पिछले जन्म जन्म स्वप्न सा होता है, इस प्रकार का महाप्रभु की लीला में आस्वादन रहेगा। महाप्रभु की जो लीला है वह साधक भाव की लीला है। महाप्रभु के पार्षद को साधक सिद्ध पार्षद कहता है सिद्ध और फिर भी साधक भाव में है, और जो ब्रज में होते हैं सिद्ध सिद्ध पार्षद, वो तो सिद्ध ही, यहां साधक सिद्ध है सिद्ध पर साधक भावना रखते हैं कि मैं अपना साधक हूं, ये भावना रखते हैं। तो हाँ, तो ये गुण रहते हैं भक्ति के, और ये सब गुण रहस्य के लिए क्रांति होनी आवश्यक है, सही साधना सही कर्म करना पड़ेगा, सही कर्म से जुड़ना पड़ेगा।